नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखा रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया, वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन। और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को हरियाणा के भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट।
हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्व यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। 4 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। ईरान की समाचार एजेंसी ने IRGC के हवाले से कहा है कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के तहत किए गए। समाचार एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी सेना ने सीरिया के अल तनफ क्षेत्र में स्थित अमरीकी विशेष अभियान कमान केंद्र पर अचानक हमला किया। एक रिपोर्ट।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि हमलों के पहले चरण में कुवैत में अमरीकी सेना के अड्डे पर स्थित एक अमरीका के मिसाइल रक्षा निगरानी रडार, कई हथियार डिपो, 2 हिमर्स रॉकेट लॉन्चर और कई मिसाइलों को निशाना बनाया गया। IRGC ने सलमाह पठार पर स्थित एक नौसैनिक निगरानी रडार और ओमान के घनम क्षेत्र में स्थित एक अमरीकी हवाई निगरानी रडार पर हमला कर उसे नष्ट करने का दावा किया। इस बीच कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रही है। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एंडी बर्नहम को आज ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC के अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में आयोजित विशेष पार्टी सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि एंडी बर्नहम को 379 नामांकन प्राप्त हुए, जो नया नेता चुनने के लिए पर्याप्त संख्या थी। निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा औपचारिक रूप से सम्राट को अपना इस्तीफा सौंपा गया। इसके बाद बर्नहम को सोमवार को राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उसने चेतावनी दी है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस के अंतर्गत व्यापार लाभों तक पाकिस्तान की निरंतर पहुंच 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समीक्षा अवधि के दौरान पाकिस्तान ने GSP प्लस ढांचे के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में कमियां दिखाई। एक रिपोर्ट।
आकलन के अनुसार पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा गया है। इसमें जबरन गायब होने और गैर न्यायिक हत्याओं के मामलों में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता और कमजोर हो गई है। ये भी कहा गया है कि जबरन श्रम एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस आकलन में बलूचिस्तान और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अधिनियम और संबंधित कानूनों में हाल ही में हुए संशोधनों का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर बल देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें अभी भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ ने पाया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों के अभियोजन सीमित हैं। पाकिस्तान का कानूनी ढांचा धार्मिक, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को पर्याप्त रूप से मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करता। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
महान क्रिकेट ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का आज 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।